हरे कृष्णा। तो आज हम जो ईशोपनिषद के 12 से 14 श्लोक जो है उसमें जो दूसरा विषय है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने जो 3 दिन पहले देवी देवताओं की पूजा करके चर्चा की थी उसका थोड़ा क्विक समरी कर लेंगे। हमने देखा कैसे देवी देवताओं की पूजा एक पद्धति है भगवान ने बनाई है जिससे कि जो जो जीवात्माएं उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई दूसरा मार्ग मिले तो थोड़े हद तक प्रगति होगी उनकी, क्योंकि वे कम से कम परम सत्य की अधिकार को स्वीकार कर रहे हैं। और उसमें हमने देखा कैसे अलग अलग देवी देवताओं का अगर कोई प्रामाणिकता से पूजा करता है तो वे देवी देवता ही उनको भगवान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। जो चंडीदास थे वे चंडी की पूजा करते थे, केशव कृष्णी की, सरस्वती देवी की और वल्लभाचार्य शिव जी की। फिर उसके बाद में चर्चा की कि किस तरह से ये जो देवी देवताओं की पूजा दिखाते हैं कैसे भगवान कितने निस्वार्थ है, वे अपना आदर नहीं चाहते हैं, सिर्फ जीवात्मा का उद्धार चाहते हैं और उसके लिए जो भी जरूरी है वो करने को तैयार है। वो तो अगर मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा तो मुझे बता देना तो मैं रोक दूंगा। हाँ, तो आज हम अभी चर्चा करने वाले हैं जो निर्विशेषवाद के बारे में। ये श्लोक है जो 12वां श्लोक था। हाँ, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। तो इसकी चर्चा हमने की कैसे वो अंधकार में कैसे रहते हैं, वो इस अंधकार भरे भौतिक जगत में बने रहते हैं देवी देवताओं की पूजा। ततो भूय इवते तमो यऊसंभूत्यामृतः। तो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वो उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी वैदिक शास्त्रों में निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन कई जगह आता है, खास करके उपनिषदों में आता है, भगवद्गीता में भी आता है कि वो जो परम सत्य है इस भौतिक जगत के परे है, उस परम सत्य में कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, इस तरह से वो हमारे चिंतन के परे है। तो यह एक स्तर है परम सत्य के बारे में जानने का। और फिर उससे ऊपर का स्तर है कि हाँ उसमें कोई भौतिक गुण, उसमें कुछ गुण नहीं है, इसका मतलब भौतिक गुण नहीं है, वो आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक नाम है, आध्यात्मिक रूप, आध्यात्मिक लीला है, यह सब समझते हैं तब वो ब्राह्मण के ऊपर भगवान की साक्षात्कार व्यक्ति को होती है। पर तो जो ब्राह्मण की उपासना करते हैं वो दो प्रकार के लोग हैं, एक है ब्रह्मवादी जिनका वर्णन भगवान भगवद्गीता के 12वें अध्याय के 3रे 4थे और 5वें श्लोक में करते हैं, और दूसरे हैं मायावादी जिनका वर्णन भगवद्गीता में 9वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में हुआ है, 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी हुआ है। तो ये ब्रह्मवादी और मायावादी में फर्क क्या है? दोनों ब्राह्मण को अपना आराध्य उद्देश्य मानते हैं, दोनों ब्राह्मण में जाके अपने अस्तित्व को वहीं पे बरकरार रखना चाहते हैं, दोनों ब्राह्मण में लीन हो जाते हैं। पर जो ब्रह्मवादियों के बारे में भगवान बताते हैं 12वें अध्याय में कि ये प्रगति करेंगे, बहुत बहुत धीरे धीरे प्रगति करेंगे और उनका जो मार्ग है क्लेश से भरा हुआ है। पर ये ब्रह्मवादियों का भगवान खंडन नहीं करते हैं। तो मायावादी कौन है? मायावादियों का भगवान खंडन करते हैं और कहते हैं कि उनकी कोई बुद्धि है नहीं, वे मूढ़ा है और वे राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति प्राप्त करेंगे। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं सुतः। तो इन दोनों में प्रधान रूप से फर्क यह है कि जो ब्रह्मवादी है वो परम सत्य का जो भगवान का रूप है उसके प्रति अपराध नहीं करते हैं। मतलब ब्रह्मा ज्योति जो है, ब्राह्मण जो है वो सर्वव्यापी दिव्य ज्योति है, उसकी ओर वो आकर्षित होते हैं और वो परम सत्य का एक रूप है भगवान, या तो उसके बारे में उनको पता नहीं है या उसके बारे में उनका आकर्षण नहीं है। पर वे उसके प्रति अपराध नहीं करते हैं। और जो ब्रह्मवादी है अभी वास्तव में ब्रह्मन में, और उसके विपरीत जो मायावादी है, मायावादी ये जानते हैं भगवान के बारे में और वे कहते हैं कि वास्तव में भगवान जो भगवान मतलब परम सत्य का जो रूप है वह वास्तव में आध्यात्मिक रूप नहीं है, वह भौतिक रूप है और वह कुछ क्षण के लिए ही है। तो उनके तत्वज्ञान को मायावाद कहा गया है क्योंकि वे कहते हैं न केवल ये भौतिक जगत माया है पर जो आध्यात्मिक भगवान का धाम है, भगवान का रूप है, वो भी माया है। इसीलिए जो इसीलिए वो ब्रह्मवादी एक तरह से है क्योंकि ब्रह्मन उनका उद्देश्य है, पर वो भगवान को माया मानते हैं इसलिए उनको मायावादी भी कहा गया है। तो वे मायावादी भगवान कृष्ण के रूप के प्रति अपराध करते हैं। कैसे अपराध करते हैं? वे कहते हैं कृष्ण का रूप एक क्षणिक रूप है। जैसे एक मायावादी शिक्षक है वो कहते हैं कि वास्तव में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखता हूँ जिस स्पीकिंग थ्री कॉलम में, तो हर जन्माष्टमी में उनका जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटर है वो जानते हैं कि इस्कॉन सबसे बड़ी संस्था है कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले, तो जो वो एडिटर है वो मुझे बोलते हैं कि आप कुछ ईमेल लिखते हैं कि आप कुछ कृष्ण के बारे में लेख लिखो। तो दो तीन साल पहले उसने एक लेख लिखा था, लेटर लिखा मुझे, बोले क्या आप एक लेख लिख सकते हैं कृष्ण का रंग काला क्यों है और कुछ आप अच्छा कारण बताओ, कुछ साधारण कहानियां मत बताओ। नहीं, बड़ा अजीब विषय है, कृष्ण का रंग काला है क्यों है? तो मैं थोड़ा संशोधन किया तो मुझे पता चला कि एक मायावादी नेता है, मायावादी शिक्षक है, वो कहते हैं कि वो कारण बताते हैं उनके मनोगढ़ के अनुसार कृष्ण का रंग काला क्यों है। तो बताते हैं कि आप सोचो कि वास्तव में भगवान तो परम शुद्ध है, परम पवित्र है, तो कोई भगवान को काला रंग क्यों देगा? कोई भगवान को काला रंग क्यों देगा? काला तो काला ये अंधकार का प्रतीक होता है, काला ये अज्ञान का प्रतीक होता है। वास्तव में इसका बड़ा गूढ़ कारण है क्योंकि काला रंग प्रतीक करता है कि हमें काले रंग के परे जो सफेद ब्रह्म ज्योति है उसकी ओर जाना है। तो इसीलिए काला रंग जो है क्षणिक है, जो काला रंग का रूप है, और जो रूप है ये अज्ञान और अंधकार का कारण है, और रूप के परे हमें अरूप जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, वो सफेद है। इसलिए काले ब्रह्म ज्योति के परे हमें सफेद, काले कृष्ण के परे हमें सफेद ब्रह्म ज्योति के पास जाना है। तो इस तरह से वो अपना तर्क वितर्क करते हैं। और वास्तव में जो अज्ञानी लोग हैं उनको बड़ा आकर्षण लगता है, हमें पता ही था अच्छा ये रंग है, ये कारण है भगवान के काले रंग का कि उसके परे हमें जाना है। शास्त्रों में कहीं नहीं बताया है कि भगवान के रूप के हमें परे जाना है। भगवान भगवदगीता के सातवें अध्याय में बताते हैं सातवें श्लोक में, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। भगवान स्पष्ट रूप से दसवें अध्याय में आठवें श्लोक बताते हैं चतुर्थ श्लोक की भगवदगीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे आता है। सब कुछ मुझसे आता है मतलब ब्रह्म ज्योति है वो भी मुझसे ही आती है। तो वास्तव में भगवान का रंग काला क्यों है हम जानते नहीं है, भगवान की स्वेच्छा है, पर भगवान अपने काले रंग से दिखाते हैं कि कैसे जो साधारण रूप से जो इतना आकर्षक नहीं माना जाता है वह भी भगवान में जब आता है तो दिव्य रूप से आकर्षक बन जाता है। इसीलिए भगवान का रंग श्याम है पर वो श्याम सुंदर है। तो भले ही काला रंग को आकर्षक न माना जाए फिर भी भगवान में जब वो काला रंग आता है तो भगवान सर्वाकर्षक बन जाते हैं। अगर हम भागवत में पढ़ते हैं तो उसका वर्ण इतना आकर्षक था कि न केवल गोपियां, न केवल मानव, बस सब योनियां, चाहे वो गैया हो, मोर हो, पंछी हो, वे सब कृष्ण के रूप की ओर आकर्षित होते हैं। तो वास्तव में भगवान का रूप काला भी नहीं है, वो एक काले और नीला का एक ऐसा अवर्णनीय समन्वय है जो हम न तो वर्णन कर सकते हैं न कल्पना कर सकते हैं। हम सिर्फ उसके बारे में थोड़ा इंडिकेशन, उसके उसका थोड़ा हम उल्लेख कर सकते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। चक्रवर्ती पाद बताते हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि वास्तव में हम हमारी भौतिक इंद्रियों से जो आध्यात्मिक तत्व है वो समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए वहां पे जो कृष्णा बुक में वेद स्तुति श्रुति स्तव जो अध्याय है, आखिरी अध्याय में से एक अध्याय, 90 अध्याय में से, जब श्रुति या सब भगवान को प्रार्थना कर रही है उस समय बताया गया है कि वहां पे परीक्षित महाराज श्रीदेव गोस्वामी को सवाल पूछते हैं कि किस तरह से हम हमारी भौतिक इंद्रियों से परम सत्य जो आध्यात्मिक है उसको समझ सकते हैं। तो उसके जवाब में भगवान बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा सवाल है और यही सवाल बहुत पहले नारद ऋषि ने ये नर नारायण ऋषि से किया था और मैं वहां पे क्या संवाद हुआ ये बताता हूँ। और बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर आता है, उसमें बताया गया है कि वास्तव में हम भगवान के दिव्य रूप का न तो कल्पना कर सकते हैं न वर्णन कर सकते हैं। तो जब चक्रवर्ती बात बताते हैं कि जब अगर हम हम बोलते हैं कि भगवान एक 16 वर्ष के श्याम वर्ण के युवक है, तो फिर एक साधारण व्यक्ति क्या करेगा, एक 16 वर्ष के युवक का कल्पना करेगा, एक श्याम वर्ण का कल्पना करेगा और दोनों कल्पनाओं का मिलन करेगा, सोचेगा हाँ भगवान ऐसे है। पर दो भौतिक मानसिक कल्पनाओं से परम पुरुषोत्तम भगवान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसीलिए इस तरह से हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते हैं। पर वास्तव में जब हम इस तरह से चिंतन करते हैं तो क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार हमारे मन की शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और उसे जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके बाद भगवान स्वयं सेवोन्मुखे ही चिर्भादौ स्वयं एव स्फुरस्वधा, भगवान स्वयं के रूप को हमारे हृदय में उजागर करते हैं और उस समय भगवान का स्वरूप क्या है वो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए अनेक वैष्णव कवि है, चाहे वो विश्वनाथ चक्र ठाकुर हो, वेदांत देशिका हो श्री संप्रदाय में, या अनेक महान कवि है वैष्णव कवि, कहते हैं कि हे प्रभु मैंने बहुत सारे कविता लिखे आपके गुणगान में और जब मैंने इस गुणगान में आपकी कविताएं लिखी तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपका गुणगान किया है, पर जब अंत में मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे पता चला कि मैंने वास्तव में जो गुणगान किया है वो गुणगान नहीं था, वो अपमान था, वो गुणगान नहीं था अपमान था। क्योंकि अगर मैं सोचा कि मैंने गुणगान किया कि प्रभु आपकी आंखें कमल पुष्प के दल के समान है, तो वास्तव में हमारे भौतिक दृष्टि से कमल पुष्प बहुत सुंदर है और भगवान की आंखें इतनी सुंदर है कि उसके साथ उसकी तुलना कमल पुष्प से करना मतलब वास्तव में ये भगवान के सौंदर्य का अपमान हो जाता है। कमल पुष्प बहुत ही कम सुंदर है भगवान के सौंदर्य के समान। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई इस्कॉन के बड़े जीवीसी है और कई बड़े बड़े राष्ट्र है उनके जीवीसी उनके अध्यक्षता में है और वो आते हैं और कोई नया व्यक्ति आता है, उनको बोलता है कि आप ये इस मंदिर के संकीर्तन डिपार्टमेंट के हेड हो, आप कितने बड़े व्यक्ति हो। तो व्यक्ति गुणगान कर रहा है पर वास्तव में गुणगान कितना अपूर्ण है क्योंकि वो व्यक्ति उस गुणगान से बहुत बड़ा है। तो जो जीबीसी है पूरे इस्कॉन के उनको एक मंदिर के एक डिपार्टमेंट का हेड बोलना वो गुणगान ही उनके लिए अपमान हो जाएगा। ठीक उस तरह से हम भौतिक दृष्टि से भगवान का गुणगान करते हैं तो वो गुणगान अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है कभी भी। पर फिर भी क्योंकि हमारा मन जो है वह शब्दों और संकल्पनाओं के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए शास्त्र हमें कुछ शब्द बताते हैं, कुछ तुलनाएं बताते हैं, कुछ उपमाएं बताते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम हमारा भक्तिभाव भगवान के प्रति व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। पर अंत में जब भगवान का रूप हम देखेंगे तो भगवान का जो दर्शन होगा जब हम शुद्ध हो जाएंगे तभी, तो वो बहुत अलग होगा, वो बहुत दिव्य होगा। तो इसीलिए भगवान का रूप जो काला है वो काला हमारे भौतिक जगत के काले के समान नहीं है, प्रभुपाद जी अफ्रीका में थे एक बार, अफ्रीका के एक व्यक्ति ने आके स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी मैंने सुना कि आप एक काले भगवान की पूजा करते हो। तो फिर उस समय काले और सफेद का बहुत भेदभाव हुआ कर रहा था, तो काले लोग कम माना करते थे हमेशा लोग। तो उसने उसी लोग से पूछा, आप काले भगवान की पूजा करते हो? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हाँ, कृष्ण काले है पर तुम्हारे जैसे नहीं, तुम्हारे जैसे नहीं। मतलब इस भौतिक जगत में काला जो रंग होता है वो इतना आकर्षक नहीं माना जाता है, पर फिर भी बहुत ही भगवान बहुत सुंदर है, और उनका जो भौतिक संकल्पना के परे सौंदर्य जो है उसका वर्णन आता है श्याम सुंदर भाव से, श्याम सुंदर शब्द से। तो हमारी ये सारा चर्चा का उद्देश्य क्या था, यह बताना कि मायावादी ये भगवान के प्रति अपराध करते हैं। कैसे अपराध करते हैं? वे कहते हैं कि भगवान का जो रूप है वो माया है और हमें भगवान के रूप के परे जाना है। और वे कहते हैं कि ये जो रूप की पूजा है ये केवल कम बुद्धि वाले लोग करते हैं, जो और बुद्धि वाले बुद्धिमान लोग हैं वे इस रूप के परे जाएंगे। तो जयप्रकाश महाराज एक प्रसंग बताते हैं कि वे जब पहले प्रभुपाद जी के साथ मायापुर में आए थे, फिर जगन्नाथपुरी आए, तो प्रभुपाद जी ने कहा वहाँ पे प्रवचनों में प्रभुपाद बोला करते थे कि ये जगन्नाथ है, ये जगन्नाथ है, आप उनको हिंदू नाथ क्यों बना रहे हैं? आप केवल हिंदुओं को अंदर जाना चाहते हैं, अगर कोई जगन्नाथ जी की भक्त कर रहा है तो उनको अंदर जाने देना चाहिए। जयप्रकाश महाराज ये निवेदन लेके जगन्नाथ जी मंदिर के अध्यक्ष के पास चले गए। तो अध्यक्ष बोल रहा कि आप जाइए वहाँ के शंकराचार्य थे, वहाँ पे गोवर्धन मठ है, शंकराचार्य ने शुरू किया हुआ है जगन्नाथपुरी, वहाँ पे जाइए, अगर वो शंकराचार्य अनुमति देंगे तो हम आपको आने देंगे। तो शंकराचार्य से मिलने गए, और जब रुके थे उनके लिए मिलने के लिए बाहर, तो देखा कि उनके प्रांगण में बहुत सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह थे, और देखा कि अच्छी तरह से सुशोभित थे, अलंकारित थे। तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो जो मायावादी है वे विग्रहों की पूजा नहीं करते हैं साधारण। तो उन्होंने उनको एक प्रभुपाद जी का संवाद याद आया। प्रभुपाद जी बोले थे कि जब मायावादी अपने मायावाद के तर्क वितर्क से बोर हो जाते हैं तो वे चेंज के लिए विग्रहों की पूजा करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए विग्रहों की पूजा करते हैं। तो फिर वो शंकराचार्य आए और फिर उन्हें बातचीत हुई उनकी, और शंकराचार्य ने बताया कि ये शंकराचार्य मतलब अभी शंकराचार्य नहीं है, ये अभी के शंकराचार्य, शंकराचार्य ने बताया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो आप जो भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप ऐसी भक्ति करते रहिए और अगले जन्म में आपका जन्म हिंदू परिवार में होगा और फिर तब आप जगन्नाथ जी का दर्शन उनके मंदिर में जाकर कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बड़े राजनीतिक पद्धति से ना बोल दिया कि हम आपको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दे सकते। तभी जयप्रकाश महाराज ने पूछा, अभी वो तो काम होने वाला नहीं, एक सवाल पूछ लेते हैं, पूछा कि आप तो शंकराचार्य आप अद्वैतवाद का पालन करते हैं तो आप ये राधा कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं? बताया राधा कृष्ण पूजा कौन कर रहा है? तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले यहाँ पे तो राधा कृष्ण के विग्रह है। बोले वास्तव में राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी ही पूजा कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मानो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म ब्रह्म की पूजा कर रहा है। तो वास्तव में कितना दुर्भाग्य का विचार है कि जो विग्रह है वो विग्रह को उपासना कर रहा है पुजारी, वह सोच रहा है कि मैं ही भगवान हूँ और मैं खुद की पूजा कर रहा हूँ। तो इस तरह जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान के रूप की निंदा करते हैं या भगवान के रूप को एक सीढ़ी समझते हैं कि सीढ़ी से अगर हम ऊपर उठ जाते हैं तो बाद में सीढ़ी को लात मार के निकाल दो। जैसे मैं कुछ दिन पहले बता रहा था आपको, कैसे एक और मायावादी शिक्षक है, वो बताते हैं कि आपको जो जो रूप अच्छा लगता है उस रूप को आप चुनो और उस रूप पे आप चिंतन करो, और आप इस तरह चिंतन करते जाओ कि जब आप देखोगे कि वास्तव में आप ध्यान में पूर्व से मग्न हो जाएंगे, तो जो भी रूप है आपने मान लीजिए शिव जी का रूप लिया है, आपके इष्ट देवत को माना है, तो आपके ध्यान की शक्ति से वो जो विग्रह है वो चूर चूर होकर मिट्टी बन जाएगा। तो तब आप समझ जाना कि आपके ध्यान में आपने समाधि प्राप्त कर ली है, आप रूप को नाश करके रूप के परे चले गए हैं। तो कई बार शिष्यगण वो ध्यान से रूप वो विग्रह को तोड़ तो नहीं सकते है, तो खुद हाथ पैर से विग्रह को तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने समाधि प्राप्त कर ली। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए जो मायावाद है ये बहुत खतरनाक है। मायावाद ये भगवान के प्रति अपराध होता है, भगवान के रूप प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति अपराध होता है। और इसलिए इसका हमारे समस्त आचार्यों ने खंडन किया है। तो वास्तव में शंकराचार्य जी जो आए थे वे उन्होंने मायावाद का भी प्रचार किया, भक्ति का भी प्रचार किया। उन्होंने भजे गोविंदम ऐसे भक्ति के बारे में बहुत श्लोक गाए हैं, पर उनके जो अनुयायी हैं वो उनके भक्ति श्लोकों का दुर्लक्ष्य करते हैं और कहते हैं उन्होंने जो ज्ञान के बारे में शिक्षण दिया है मायावाद के बारे में वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षण है। और इस तरह से वे शंकराचार्य को मायावादी मानते हैं। तो पद्म पुराण बताया गया है, शिवजी कहते हैं कि मुझे विष्णु ने आदेश दिया है कि कलयुग में जाऊं और जो लोग भगवान की ईर्ष्या रखते हैं, तथागत पर खुद को धार्मिक बतखाना चाहते हैं, उनको शुद्ध भक्तों से अलग करो। तो मतलब शुद्ध भक्त जो है या शुद्ध भक्त जो करना चाहते हैं वे भगवान की शरण जाते हैं और प्रामाणिकता से उनकी भक्ति करते हैं। तो जो मायावादी है वे भगवान की शरण जाने का दिखावा करते हैं पर अंदर सोच रहे होते कि मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसे लोगों को शुद्ध भक्तों से अलग करो। तो इस उद्देश्य से शंकराचार्य शिवजी को विष्णु ने भेजा था। यह पद्म पुराण में वर्णन है और वहाँ पे श्लोक आता है, प्रभुपाद जी से हमेशा कोट करते थे कि मायावाद शास्त्र प्रछन्नम बौद्धम उच्यते मया कल्पिता देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। शिवजी बताते हैं मया कल्पिता देवी, देवी मतलब पार्वती को उतारे, मेरे द्वारा कल्पिता कल्पना की जाएगी। किसकी कैसे की जाएगी? कलौ ब्राह्मण मूर्तिना, कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊंगा। और क्या मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद जो असत शास्त्र है, सत शास्त्र नहीं है, शास्त्र का गलत निष्कर्ष है, असत शास्त्र। और वो क्या है? प्रछन्नम बौद्धम उच्यते, वह जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म को उन्होंने वो ढका हुआ बौद्ध धर्म है। मतलब वो जैसे बौद्ध धर्म जाता उन्होंने वैदिक शास्त्रों का खंडन किया था, तो मायावाद भी एक तरह से वैदिक शास्त्रों का खंडन करता है, पर वो दिखावा करता है कि वास्तव में यह वैदिक शास्त्रों का ही निष्कर्ष है। तो इसीलिए जो वैष्णव आचार्य है वो मायावाद का बहुत विरोध करते हैं। और ये जो विषय है ये अगले श्लोकों में भी आएगा, तो इसलिए मैं इस पर विस्तार से चर्चा करता हूँ अभी। तो हम जानते हैं शंकराचार्य जी सातवीं शताब्दी में आए, फिर उसके बाद में ग्यारहवीं शताब्दी में उनका जो उन्होंने अद्वैतवाद बताया था उसका खंडन पहले रामाचार्य जी ने किया, फिर बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में माध्वाचार्य ने किया, और फिर सोलहवीं शताब्दी चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने अचिंत्य भेदावैत बताया। तो मायावाद का खंडन सब आचार्यों ने किया है। और अठारहवीं शताब्दी में जब बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखा, वेदांत सूत्र पे जो उन्होंने भाष्य लिखा, उससे उन्होंने पुनः एक बार शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद लिखा था उसका खंडन किया। पर 19वीं शताब्दी में तो इस तरह से अनेक वैष्णवाचार्य ने मायावाद का खंडन करते आए, और मायावाद का जो पकड़ था मानव भारतीय समाज पे, हिंदू समाज पे बहुत कम हो गया। तो क्या है कि कितना भी लोग मायावाद के बारे में विचार करे, जनसाधारण लोगों को भक्ति करनी है, भगवान का नाम बोलना है, कीर्तन में ही आनंद है, तो जनसाधारण लोगों में कभी मायावाद कभी आकर्षित नहीं हुआ था। पर जो काफी बुद्धिमान लोग थे वह कहते थे कि हाँ हम मायावादी है, अब मायावादी असली निष्कर्ष है शास्त्रों का। हम देखते कैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी प्रकाश आनंद सरस्वती ने वही आरोप लगाया था कि ये भावुक लोग तो भक्ति करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तुम सन्यासी हो, तुम ऐसे नाच क्यों रहे हो? तो उनका क्या भाव था कि भक्ति है कम बुद्धिमान लोगों वालों के लिए, हम अधिक बुद्धिमान है, सन्यासी अधिक बुद्धिमान है, तो उनको भक्ति नहीं करनी चाहिए, उनको नाचना गाना नहीं चाहिए, उनको वेदांत सूत्र पे चर्चा करनी चाहिए। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिखाया कैसे ये नाचने वाले गाने वाले भक्त भी होते हैं, वो उनसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, वो शास्त्रों का उनसे और अधिक ज्ञान होता है। तभी प्रकाशान जब चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र का असली अर्थ समझाया, तो तभी प्रकाशान सरस्वती को पता चला कि प्रकाश क्या है, वास्तव में आनंद क्या है वास्तव में और सरस्वती क्या है वास्तव में। तो इस तरह से कभी उनको उनका जो सत्सत वास्तव में उनको सरस्वती की कृपा मिली और असली आनंद से प्रकाशित हो गए। पर ये साधारण मायावादी लोगों का संकल्पना होती है कि भक्ति कम बुद्धि वाले लोगों के लिए। हाँ, भक्ति कम बुद्धि वाले लोग भी कर सकते हैं। ये भक्ति की महिमा है कि इस व्यक्ति के पास ज्ञान के ज्यादा बुद्धि नहीं है वो भी भक्ति कर सकता है। पर इसका मतलब नहीं है कि अधिक बुद्धिमान लोग भक्ति नहीं कर सकते। भगवान यहाँ तक कहते हैं बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मतलब जो अनेक जन्म तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद मेरी भक्ति में आता है। तो अनेक आचार्यों ने मायावाद का खंडन किया और मायावाद काफी कमजोर हो गया था भारत में। पर जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पे राज्य किया तब वास्तव में जैसे मैं पहले उल्लेख किया था कि कैसे मुसलमान लोग जो थे मुसलमान राजा है वे सीधा मंदिरों को तोड़ते थे, ग्रंथों को जलाते थे और वैदिक शास्त्र को उन्होंने भौतिक रूप से उससे नष्ट करने का प्रयास किया। पर क्योंकि लोगों की श्रद्धा बहुत सुदृढ़ थी इसीलिए वैदिक संस्कृति जारी रखी। और जब ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोग अधिकांश रूप से क्रिश्चियन ही थे, तो वे जब आए तब उन्होंने भौतिक रूप से वैदिक संस्कृति का आक्रमण नहीं किया, इतना उन्होंने बौद्धिक रूप में आक्रमण किया और उन्होंने कहा कि आप ये क्या पागलपन है, एक ही देवता परम भगवान होने चाहिए, आप इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हो और क्या है, परम सत्य तो सारे हमारे दृष्टि के परे है, आप इतने सारे कल्पित रूप बना दिए है वो परम सत्य के, आपके धर्म में जातिवाद है, इतना भेदभाव है, और इस तरह से बहुत निंदा करने लग गए वैदिक शास्त्रों की। तो तभी भारत के जो नेता थे उन्होंने सोचा कि अगर हमें भारत को आजाद करना है अंग्रेज राज्य से तो हमें भारतीय जनता को एकत्रित करना चाहिए, और अगर एकत्रित करना है तो फिर भारतीय लोगों में उनको एकत्रित करने के लिए एक शक्ति बड़ी बहुत ही शक्तिशाली है, वह है धर्म की शक्ति। तो धार्मिक स्तर पे उन्होंने एकत्रित करना है ये फैसला किया। तो तभी हिंदुत्व जो था उसका निर्माण हुआ, हिंदुत्ववाद का। अभी एक तरह से अच्छा है हिंदुत्ववाद जो है तो वैदिक संस्कृति संबंधित है, वैदिक संस्कृति का पालन करना चाहता है, पर वैदिक संस्कृति का उद्देश्य पता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम जो हिंदू लोग हैं उनको एकत्रित करना है तो ये सब अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग शास्त्रों को मानते हैं, अलग अलग मार्गों को अनुसरण करते हैं, तो उन सबको एक करना है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, जो ब्राह्मण है उसको परम सत्य कह देंगे और सारे देवी देवता है जो है वो ब्राह्मण के क्षणिक रूप बोल देंगे। तो ऐसे बोलने से क्या होगा कि सारे लोग चाहे वो वैष्णव हो, शक्त हो, शैवी हो, शाक्र हो, जो भी हो, वे सब प्रसन्न हो, क्योंकि हम उनके देवताओं को कम नहीं मान रहे, सब देवता जो है वही ब्राह्मण के एक रूप है, अलग अलग रूप है। तो इस तरह से ये राजनीतिक परिस्थिति से, राजनीतिक कारणों से मायावाद को पुनः जागृति हो गई। और हम देखेंगे जो आधुनिक भारत के स्वतंत्रता युद्ध में जो भी तथाकथित आध्यात्मिक नेता थे वे सब राममोहन रॉय से लेकर दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, डॉक्टर राधाकृष्णन हो, महात्मा गांधी हो, वे सब ये निर्विशेषवाद का ही अनुशीलन करते थे। भक्ति थोड़ी बहुत करते होंगे पर अंत में निर्विशेषवाद। तो उसके कारण निर्विशेषवाद जो था, मायावाद था, पुनः बहुत शक्तिशाली हो गया भारत में। और ये सब चल रहा था तब भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिशांत ठाकुर और किशोर प्रभुपाद ने इसका बहुत ही दृढ़ता से संघर्ष किया। और तो अब प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में ये भी बताया कि किस तरह से कि उन्होंने कहा कि हमें जन जागृति करनी है तो भारत में बहुत गरीबी है, तो भारत में गरीबी है, गरीबी को निकालनी है तो क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि हिंदू लोगों को बताना चाहिए कि ये गरीब व्यक्ति है वो भी नारायण ही है, तो नारायण की पूजा करने की तुम्हें इच्छा है तो दरिद्र नारायण की पूजा करो। तो वास्तव में यह गरीब लोगों की सेवा करना यह भाव अच्छा है, यह भाव अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं भागवतम में भी गरीब एक भूखा मानव छोड़ो एक भूखा जानवर भी आता है महाराज रामतीदेव के पास या महाराज शिव के पास, तो उनका वो पालन करते हैं, उनको यहाँ अन्न न खेलते अपना शरीर भी त्यागने के लिए तैयार होते हैं। तो लोगों का कल्याण करना, लोगों की सेवा करना, ये वैदिक शास्त्रों में बताया है। पर जब महाराज रामतीदेव वो यवन को या उसके कुत्ते को अन्न दे रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि ये कुत्ता नारायण है, ये नारायण के संतान है और भगवान नारायण की सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। पर ये दरिद्र नारायण से क्या होता है, वास्तव में भगवान के प्रति अपराध हो जाता है। तो क्या हो रहा था, तभी जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे वे उन्होंने बौद्धिक स्तर पे वैदिक संस्कृति पे बहुत आक्रमण किया, पर ज्यादा लोग ज्यादा हिंदू लोग उससे क्रिश्चियन बने नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये भारत के बुद्धिमान लोग जो है वो कभी परिवर्तित हो गए नहीं, तो इसीलिए उन्होंने समाज सेवा चालू कर दी और गरीब लोगों को अन्न देकर दवाई देकर वे गरीब लोगों को क्रिश्चियन बनाने लग गए। तभी भारत के नेता ने सोचा कि ये हिंदू लोग क्रिश्चियन क्यों बन रहे, क्रिश्चियन नहीं बनने चाहिए, इसलिए हम हिंदू रखेंगे और हिंदू रखने के लिए हमें क्या करेंगे, हम हिंदू धर्म में समाज सेवा चालू कर देंगे। तो समाज सेवा चालू करना अच्छी बात है, समाज सेवा करना बुरी बात नहीं है, पर उन्होंने क्या बड़ी गलती की, उन्होंने कहा कि आपको भगवान की सेवा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, समाज सेवा ही करो, आप मंदिर में अभिषेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गरीब लोगों के लाओ। तो एक मायावादी नेता है वे कहते हैं कि आप सब लोग मूर्ख लोग, आप हिंदू लोग, वे खुद ही हिंदू नेता है, पर वे कहते हैं कि आप कितने मूर्ख हो कि आप तुलसी को पानी डाल रहे हो, तुलसी को पानी डालने से क्या मिलने वाला है, कुछ फल नहीं आते, कुछ फूल नहीं आते, कुछ खाने को नहीं मिलता है। आपको अगर किसी को पानी डालना है तो आप बैंगन को पानी डालो, बैंगन के फल को, बैंगन के पेड़ को पानी डालो, उससे आपको बैंगन खाने को मिलेंगे, उससे आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। तो अभी ये इतने आध्यात्मिक नेता कहलाते हैं खुद को, पर तुलसी देवी जो है वो वास्तव में वृंदा देवी राधा रानी का विस्तारित रूप है। और इस तरह से जो अपराध होता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे वैष्णव आचार्य भक्तिवेदांत ठाकुर हो या अक्षय प्रभुपाद हो कितने नाराज और क्रोधित हो जाएंगे इससे। तो इसीलिए हम जब प्रचार करते हैं तो हमें मायावाद को दो दृष्टि से देखना चाहिए, एक दृष्टि से कि वास्तव में वैदिक संस्कृति का ही पालन कर रहे हैं एक दृष्टि से, और वैदिक संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं वो एक तरह से अच्छा है, पर दूसरी तरफ से क्या होता है, वो वैदिक संस्कृति का जो अंतिम सार है वेदेश सर्वै रहमेव विद्यो, भगवान की भक्ति, वो उसको तुच्छ बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वो बुरा है। तो इसलिए हमें एक तरह से कृष्ण भक्ति का जब प्रचार करेंगे, जब प्रभुपाद जी आए वापस भारत में और ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तो भारत में सन्नाटा हो गया और हजारों हजारों की संख्या में लोग आकर्षित हो गए भक्ति की ओर। क्यों? क्योंकि भक्ति ही जो हृदय को स्पर्श करती है। ये मायावाद का जो तर्क वितर्क जो है, जो ज्ञान का विश्लेषण है, हृदय को स्पर्श नहीं करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में हम देखें 12 13 और 14 श्लोक जो है इन तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो मायावाद का बहुत खंडन करते हैं। तो मायावाद, तो मैंने मायावाद के बारे में तर्क के स्तर पे बहुत पहले चर्चा की थी, कैसे भगवान का रूप है और अरूप भी है। तो आज मैंने मायावाद की चर्चा दो स्तर पर की, एक तो शास्त्रों के आधार पर और दूसरे ऐतिहासिक दृष्टि से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि ततो भूय इवते तमो यऊसंभूत्यामृतः। तो इस तरह से अगर मायावादी लोग वे भगवान और भगवान की भक्ति उसके प्रति अपराध करते हैं तो वे और अंधकार में उनका प्रवेश होगा। तो उसके बाद में हम अगले श्लोक पर जाते हैं। अभी तो अभी ये 13वां श्लोक है। अन्य देवाहु संभवाद अन्यत आहुर संभवाद इति शुश्रुम धीराणाम येन तद्विच चक्षिरे। यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से जो जो देवी देवताओं की पूजा करता है उनको एक, जो असंभूति की पूजा करता है उनको एक फल मिलता है, और जो संभूति की पूजा करता है वह उनको अलग फल मिलता है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग मार्गों का अलग अलग फल है, सभी मार्गों का एक फल नहीं है। तो ये जो है, ये जो सब मार्ग एक ही फल को ले जाते हैं, यह वास्तव में एक धारणा है जो मायावादियों ने निकाली। इनका कहना तो यह था कि आप देवी की पूजा करो, आप शिव जी की पूजा करो, आप कृष्ण की पूजा करो, आप मेरी पूजा करो, सबको एक ही फल मिलने वाला है। तो क्या है, हम सब ब्रह्म ही है, वो देवी भी ब्रह्म का रूप है, मैं भी ब्रह्म का ही रूप हूँ। तो वास्तव में ये जो धारणा है आप किसी की पूजा करो एक ही फल मिलने वाला है, यह मायावादियों निकाली हुई धारणा है। और ये श्लोक स्पष्ट रूप से लिखता है कि ये सत्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि संभूति की पूजा से एक फल मिलेगा और असंभूति की पूजा से दूसरा फल मिलेगा। तो ये तात्पर्य जो है, इस तात्पर्य में वर्णन किया गया है, लंबा तात्पर्य है, 16 पैराग्राफ है इसमें। पर जो मुद्दे जो है वो हमने चर्चा किए है पहले। तो पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद ये बोलते हैं कि जो धीर व्यक्ति है वह धीर खंडन करता है कि सब मार्ग धीर व्यक्ति दिखाता है कि सब मार्ग एक ही उद्देश्य पे नहीं ले जाते सबको। और इसके लिए साधारण उदाहरण प्रभुपाद जी दिया करते थे कि कैसे आप एक ट्रेन पकड़ते हैं, अगर आप कलकत्ता की ट्रेन पकड़ेंगे तो कलकत्ता जाएंगे, चेन्नई की ट्रेन पकड़ेंगे तो कलकत्ता नहीं जाएंगे, तो जिसकी हम उपासना करेंगे वहीं पे हम जाएंगे। और यह केवल एक तर्क का उदाहरण नहीं है, स्पष्ट रूप से भगवद गीता में बताया गया है। भगवद गीता में 9वें अध्याय का 25वां श्लोक हम देखते हैं तो बहुत ही स्पष्ट श्लोक है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत याजिनोऽपि माम। तो जो देवताओं की पूजा करेगा वे देवताओं के लोक में जाएगा, जो भूतों की पूजा करेगा भूतों के पास जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा पितरों के पास जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा मेरे पास आएगा। तो भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे अलग अलग मार्गों के अलग अलग फल हैं, ऐसे नहीं कि सब मार्गों का एक ही फल है। तो सब अलग अलग मार्ग अलग अलग ध्येयों अलग अलग उद्देश्यों पे लेके जाएगी हमें। तो जो ये धारणा है कि सब मार्ग एक ही फल पे ले जाएगी, एक ही ध्येय पे ले जाएंगे, यह धारणा वास्तव में गलत है। ये धारणा आती है भगवद गीता का 4वां अध्याय जो है उसका 11वां श्लोक जो है उसके आधार पर आती है। 11वां श्लोक क्या है, प्रभुपाद जी इसका इस 11वें श्लोक का पहला भाग कोट करते थे, मायावादी इसका दूसरा भाग कोट करते हैं। ये श्लोक है, यथा माम सपद्यन्ते ताम तथैव भुजाम्यहम् समवर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो भगवान बता रहे हैं कि जो जिस भाव से मेरे शरण में आता है उसको मैं वही फल देता हूँ और सब लोग मेरे मार्ग पे ही है। तो वास्तव में अगर हम संस्कृत के नियमों के अनुसार मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः इसका यदि भाषांतर करते हैं तो स्पष्ट रूप से भाषांतर होता है कि सब लोग मेरे मार्ग पे है। पर कई मायावादी इसका भाषांतर करते हैं सब मार्ग मेरे पास आते हैं, पर वास्तव में संस्कृत और संस्कृत व्याकरण के नियमों का ये उल्लंघन है। और न केवल ये उल्लंघन है पर हम देखते हैं कि दूसरी जगह पे भगवान कहते हैं कि सब मार्गों से आप मेरे पास नहीं आते हो, आप ये करते हो तो मेरे पास आओगे, ये करोगे तो आप कहीं और जाओगे। इसे हम देखा 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में। तो वास्तव में ये भगवान कह रहे हैं सब लोग मेरे मार्ग पे हैं, मतलब क्या है कि हाँ ये सत्य है कि कोई कोई भी लोग कहते हैं कि अभी हम इतने प्रगतिशील नहीं है कि हम विष्णु की पूजा कर सकते हैं, अभी हम पतित हैं, इसीलिए अभी हम दुर्गा की पूजा करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद में हम कृष्ण की पूजा करेंगे। वास्तव में अगर सही में ऐसा भाव है तो अच्छा है, पर कई बार जब दुर्गा की पूजा करते हैं लोग सोचते हैं कि दुर्गा ही परम सत्य है और वे कृष्ण की पूजा को कम मानते हैं, तो ऐसा भाव होता है तो उससे परेशानी होती है, उससे व्यक्ति अंतिम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए शास्त्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी को एक बार अमेरिका में प्रवचन दे रहे थे तो एक भारतीय विद्यार्थी ने पूछा सवाल, स्वामी जी पता नहीं कोई श्लोक है भगवद गीता में वहां पे भगवान बताते हैं कि आप जो भी करोगे आप मेरे पास आ जाओगे। तो प्रभुपाद जी सरल जवाब दिया, अगर हम जो भी करेंगे उससे हम भगवान के पास चले जाएंगे तो फिर भगवान को भगवद्गीता बोलने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो तो हम जो वो करते ही रहेंगे, तो फिर भगवान को भगवद्गीता बताए बिना ही हम भगवान के पास चले जाएंगे, तो हम जो भी कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे हम नहीं। तो भगवद्गीता भगवान ने इसलिए बताई है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं गच्छ, आप सब कुछ छोड़ो सिर्फ मेरी भक्ति करो। तो इसलिए दूसरे तीसरे और चौथे पैराग्राफ प्रभुपाद जी बताते हैं कि धीर शास्त्रों का निष्कर्ष सिखाते हैं, क्या है कि अलग अलग मार्ग अलग अलग ध्येय तक ले जाते हैं हमें। और फिर इसका उदाहरण प्रभुपाद जी पांचवे से आठवें श्लोक में लेते हैं, आठवें पैराग्राफ में बताते हैं कि कैसे कृष्ण ये संभवात है, कृष्ण ये परम सत्य है, और अनेक प्रमाण देते हैं इसके लिए। यह प्रमाण वैसे ही प्रमाण है जो प्रभुपाद जी दसवें अध्याय के आठवें श्लोक के तात्पर्य में देते हैं। अनेक शास्त्र से ये प्रस्थापित किया जाता है कि भगवान ही परम सत्य है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे अगर आप परम सत्य को स्वीकार करते हैं, तो फिर जैसे अर्जुन ने सब उपधर्मों को त्याग दिया, अपने रिश्तेदारों की देखभाल को त्याग दिया और सर्वधर्मान प्रतिज्ञा का पालन किया, यह अर्जुन ने कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार किया। पर जो लोग सोचते हैं कि लोग जनसाधारण मेरी भगवान है या मैं ही भगवान हूँ, तो वो लोग कभी परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो रविंद्र स्वरूप प्रभु ये प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य है, और वे फिलाडेल्फिया के टेम्पल प्रेसिडेंट है। फिलाडेल्फिया अमेरिका में बड़ा शहर है, तो वे जब वहाँ पे प्रेसिडेंट थे तो एक मायावादी वहाँ पे प्रचार करने आए थे, तो सारे शहर भर में उन्होंने पैम्फलेट दीवारों पे लगा दिए कि पैम्फलेट क्या था कि बुद्ध ने ध्यान किया और वे परम ध्यानी बन गए, कृष्ण ने ध्यान किया और वे परम प्रेमी बन गए, और जीसस ने ध्यान किया और वे परम योगी बन गए, आप ध्यान करो आप भी परम भगवान बन जाओ, ऐसा वहां पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। तो सब बड़े क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हो गए तो रविंद्र स्वरूप से बताया कि आप जाके इनको चखंड करना चाहिए। तो फिर वे गए, तो दो मायावादी आए थे एक संस्था से, वो प्रवचन दे रहे थे और वो पूरा बताए थे, और तो प्रवचन हो गया, दो घंटे का प्रवचन हो गया। तो इसके बाद में इसको सवाल है पूछा, तो तुरंत रविंद्र स्वरूप ने हाथ उठाया। रविंद्र स्वरूप धोती कुर्ता पहने हुए थे, बाल नहीं थे, शिखा थी, तो सब लोग समझ गए कि ये कोई दूसरे वैदिक ग्रंथ वैदिक मार्ग से ही है। और जब उन्होंने देखा ये दो मायावादी ने कह रहे ये वैष्णव आ गए सवाल पूछे, तो उन्होंने देखा किसी और कोई सवाल लेकर आए तो कहीं और जाने के लिए। पर जब उन्होंने जब सारे लोगों ने देखा कह रहे ये कोई वैदिक संस्कृति के लोग इनको सवाल है, तो किसी ने और ने हाथ ऊपर ही नहीं किया, तो बड़े अनिच्छा के उन्होंने कहा हाँ क्या सवाल है आपका। तो फिर उन्होंने बताया स्वरूप बोले कि आपने बताया कि कृष्ण ने ध्यान करके फिर कृष्ण भगवान बन गए, पर श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कृष्ण जब एक महीने के थे तभी उन्होंने पूतना का वध किया और अपनी जो भगवत्ता प्रदर्शित की, तो अगर एक महीने के थे तभी वो भगवान बन गए थे, तो उन्होंने ध्यान कब किया, ध्यान कब किया। जब ये सवाल उन्होंने पूछा तो दोनों मायावादी का मुंह खुला पड़ गया। तो ऐसा जब करते हैं ना, जब मायावादी इस तरह से जवाब नहीं दे पाते तो उनका एक वो तर्क निकालते, तो एक मायावादी बोलने लगा शब्द वापस बोला शब्द, और फिर वो जो ऑडियंस प्रेक्षक थे उनमें कुछ मायावादी शब्द 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 शब्द, और फिर मायावादी बड़े ऐसे करुणामय दृष्टि से रविंद्र स्वरूप को देख रहे, मेरे प्रिय मित्र क्या तुम समझते नहीं हो कि शब्द वास्तव में माया और बंधन का कारण है, शब्द मोह का कारण है, और अगर हमें माया और मोह और बंधन के परे जाना है तो शब्दों के परे जाना चाहिए। आप शब्द बोल के शब्द उच्चारण करके आप मोह को और विस्तारित क्यों कर रहे हो, शब्दों के परे जाना है हमें। तो अभी जो भक्त ये बड़े बुद्धिमान थे, बोले एक मिनट रुको, जब तुम दो घंटा प्रवचन दे रहे थे तो शब्द तभी माया नहीं थे, मैं एक सवाल पूछता हूँ तभी शब्द माया बन जाते हैं। तो वास्तव में इस तरह से जो मायावाद है वह शब्दों के जाल में व्यक्ति को फंसा देता है और जो परम ज्ञान कुछ देता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें एक धीर व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए, और धीर व्यक्ति से जब हम श्रवण करते हैं तो फिर क्या होता है, धीर व्यक्ति से श्रवण करने से हम इस भौतिक जगत के परे जाते हैं और वास्तव में जो परम सत्य है उसकी प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से जो मायावाद है उसके उससे एक फल मिलेगा, उससे क्या होगा, राक्षसी मासुरिम चैव प्रकृति मोहिनी शिता। नवे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मायावादी क्या होते, वो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति में चले जाते हैं, पर जो भक्त उनके शरण लेता है क्या होते हैं, सद्धाम परमम मम, वो मेरे भगवत धाम में आ जाते हैं। तो दो बहुत ही अलग अलग उसके फल है। और फिर 14वें श्लोक में वर्णन आता है कैसे हमें दोनों का समन्वय रखना चाहिए। तो 14वें श्लोक अभी हम डिसाइड करते हैं। संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। यहाँ बताया जा रहा है कि संभूति और विनाश, जो परम सत्य है और जो अविनाशी है, और जो विनाशी भौतिक जगत है, दोनों का जब हम समन्वय रखेंगे तो हम भौतिक जगत के पर जाएंगे। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते, कि जब विनाश का हम दृष्टि देखेंगे तो हम भौतिक जगत के परे जाएंगे, और जब संभूति का ज्ञान रखेंगे तो हम आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पहले दो पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं विनाशेन, कि भौतिक जगत में सब कुछ विनाशास्पद है, कोई भी कुछ भी चीज अविनाशी नहीं है। कोई बहुत बड़ा राजा भी क्यों न हो या कोई बहुत बड़ा पंडित भी हो, सबका विनाश होने वाला है भौतिक जगत में। तो इसीलिए सब कुछ विनाशी है। तो संभूतिं च विनाशं च, इस तरह से छठे अध्याय में प्रभुपाद जी बताते हैं, छठे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक शास्त्र में दोनों का ज्ञान है, कैसे ये भौतिक जगत विनाशी है और आध्यात्मिक जगत अविनाशी है। तो क्या होता है, जब दोनों पता चलता है हमें तो हमें भौतिक जगत से त्याग उत्पन्न होता है, भौतिक जगत से विरक्ति उत्पन्न होती है और आध्यात्मिक जगत के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को अभी कैंसर हुआ है, थोड़ा सा कैंसर है, अभी शुरुआत में है, सर क्या है कौन, इसमें डॉक्टर बोलता है कि बहुत महंगी दवाई है, बहुत कठिन ट्रीटमेंट उपाय है, ट्रीटमेंट है, मैं नहीं करना चाहता। तो वो मरीज बोलता है मैं इतनी झंझट में नहीं पड़ूंगा। तो डॉक्टर क्या करता है, दो मरीज उसे हम लाता है, एक मरीज उसका कैंसर इतना खराब हो गया है कि अभी उसकी मृत्यु ही होने वाली है, तो पूरा शरीर सूख गया, चीख रहा है, पूरा दर्द हो रहा है, कुछ स्नायु ही नहीं है शरीर में। तो देखता है कि देखो ये तुम्हारी गति हो जाएगी, बाप रे मुझे ये नहीं होना चाहिए। फिर बाद में दूसरा एक मरीज को दिखाता है जो पूरा ठीक हो गया है, चल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, तो देखो जैसे ठीक हो गए वैसे भी तुम ठीक हो सकते हो। हाँ मैं तो ठीक हो गया, बताओ कैसे ठीक हो सकते हो। तो इस तरह से जो डॉक्टर है वो अगर कॉन्ट्रास्ट मतलब दो विरुद्ध फल दिखाता है, बीमारी का क्या फल होगा और दवाई का क्या फल होगा, स्पष्ट रूप से दिखाएगा तो क्या होगा, फिर जो मरीज है उसको लगेगा हाँ मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे ये उपाय चाहिए, दवाई चाहिए जिससे कि मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ठीक है, शास्त्र हमको दोनों दिखाते हैं, शास्त्र हमें दिखाते हैं कि ये भौतिक जगत किस तरह से नश्वर है। तो जैसे कि यह जो यहाँ बताया संभूतिं च विनाशं च, कैसे ये भौतिक जगत नश्वर है, विनाशं च, ये दोनों का वर्णन भगवद्गीता के 8वें अध्याय में आता है। भगवद्गीता के 8वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान कैसे भौतिक जगत नश्वर है वर्णन करते, और फिर 20वें से 22वें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कैसे आध्यात्मिक जगत अविनाशी है। तो इस तरह से दोनों का वर्णन होता है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद्ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनः, कि ब्रह्मा जी जो है सहस्र युग तक जिएंगे पर उसके बाद में भी उनका विनाश होगा ही, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, सबका विनाश हो जाएगा। शास्त्र में वर्णन आता है लोमश ऋषि का, लोमश ऋषि महान ऋषि थे और उनको वर्णन था, उनको वरदान था कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होगा तो उनका एक बाल गिरेगा, और जब उनके सर के सारे बाल गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। कभी सर में कितने हजारों बाल होते हैं, सैकड़ों बाल तो होते हैं, और ब्रह्मा जी के ऐसे सैकड़ों सैकड़ों दिनों तक उनका जीवन था, पर ये लोमश ऋषि वो एक पेड़ के नीचे रहा करते थे। और फिर उनके शिष्यगण ने कहा कि आपके लिए हम एक कुटिया बना जाते हैं, बोले बहुत ही जगत तो इतना नश्वर है, हमारे मानव जीवन इतना छोटा सा है, क्यों आप सब मानव जीवन का समय व्यर्थ गवा रहे हो एक कुटिया बनाने। तो आप कल्पना कीजिए उनका जीवन इतना लंबा है और सोच रहे है कि ये कुटिया बनाने में समय क्यों गवाए। तो इस तरह से जो व्यक्ति समझ जाता है कि विनाश है मृत्यु की, कि मैं सबका विनाश होने वाला है, तो शास्त्र में उदाहरण आता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के लंबे बाल है पर उसके लंबे बालों को अभी आग लग गई है, तो जब आग लग गई है तो क्या करेगा, वो तेजी से वो दौड़ेगा कहाँ नदी है, नदी जाके कूद के वो आग बुझाना चाहिए। अगर रास्ते से भी दौड़ रहा है नदी की ओर और नदी पे बैठे हैं लोग और रास्ते में लोग बैठे हैं, तो लोग जलेबी खा रहे हैं, जलेबी खाओ ना थोड़ा जलेबी खाओ, तो जलेबी की ओर देखेगा भी नहीं। हरे कृष्णा, ओके ओके फाइन, अभी स्पष्ट है,
अभी स्पष्ट है।
ओके, तो मैं लोमश ऋषि के बारे में बताता कि ये ऐसे ऋषि थे कि जिनको ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होगा तो उनका एक बाल गिरेगा, ऐसे वार्ता, और इस तरह से जब उनके शरीर के सब बाल गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। तो मतलब ब्रह्मा जी के अनेक अनेक दिनों तक उनका जीवन था, पर उन्होंने अपनी अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाई थी और पेड़ के नीचे रहा करते थे। तो फिर उनके शिष्यों ने उनको बताया कि हम आपके लिए एक कुटिया बनाते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि मानव जीवन इतना क्षणभंगुर है, आप क्यों कुटिया बना चाहते, समय व्यर्थ मत गवाओ। सुनाई दे रहा है अभी?
यस।
तो ठीक, उस तरह से शास्त्रों में वर्णन आता है इस तरह से अगर कोई व्यक्ति है उसके लंबे बाल है और बालों को अगर आग लग गई है, जब बालों को आग लग गई है तो वो दौड़ेगा तेजी से नदी की ओर, और अगर नदी की ओर जो जा रहा है उस रास्ते पे कोई व्यक्ति जलेबी खा रहे हैं और उसको बोले जलेबी खाओ ना रुको थोड़ा, तो जलेबी को ध्यान भी नहीं देगा वो, क्यों समझता है कि जल रहा है शरीर मेरा बाल और मैं जल जाऊंगा अगर मैं जलेबी खाने बैठ जाऊंगा। शास्त्र बताते हैं कि उसी तरह से जो व्यक्ति समझ जाता है कि शरीर क्षणभंगुर है, मृत्यु आने वाला है, तो उसको इंद्रिय तृप्ति का प्रलोभन भी कोई देता है, इंद्रिय विषय सामने भी आते हैं तो वो उसको ध्यान नहीं देता है, वो जानता है विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा कि कभी भी विनाश होने वाला है, तो क्या फायदा है इंद्रिय तृप्ति में लगने का। तो हमें दोनों होना चाहिए कि कैसे ये भौतिक जगत क्षणभंगुर है। तो वास्तव में अगर हम भौतिक जगत क्षणभंगुर है तो बोल लेते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि व्यक्ति को हमेशा भय में जीना चाहिए, हमेशा भय में जीना चाहिए ऐसे नहीं है, हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण होता है तो फिर हम अभय हो जाते हैं। तो इस तात्पर्य में बताया है किस तरह से वैदिक शास्त्रों में दोनों वर्णन है, तीसरे से छठे पैराग्राफ में बताया है कि वेद जो विनाशी भौतिक जगत और अविनाशी आध्यात्मिक जगत दोनों का वर्णन करवाते हैं। और फिर बाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं संभूत्या अमृतम अश्नुते, इसका वर्णन करते हैं सातवें से नौवे पैराग्राफ में। वहां पे बताते हैं कि केवल कृष्ण की शरण जाने से ही हम अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु के परे जा सकते हैं, उसके बिना संभव नहीं है। कि जब हम कृष्ण का शरण जाते हैं तभी हम मृत्यु के परे जा सकते हैं। तो कैसे मृत्यु के परे जा सकते हैं हम? वास्तव में इसमें पहले बताया था कि भक्त को भी मृत्यु आएगी, पर जो कि भक्त की जो आसक्ति है शरीर से नहीं है, भौतिक चीजों से नहीं है, भक्त की आसक्ति भगवान से है, इसीलिए मृत्यु का दुख उसे नहीं होगा, मृत्यु की वेदना उसे नहीं होगी। ऐसे आप से कई भक्तों को पता होगा कि प्रभुपाद जी के वरिष्ठ जुहू मंदिर में रहा करते थे श्रीधर स्वामी महाराज, तो उनको कई सालों तक बहुत बीमारी थी और वो बीमारी होने के बावजूद वे हमें बड़े ही दृढ़ संकल्प से भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे, प्रचार करते रहे, और जब अंत मृत्यु का समय आ गया तभी बिल्कुल निर्भय थे वे। जब मृत्यु का समय आया उनका तो डॉक्टर ने बताया कि अभी तो आपका लिवर जो था वो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी आपको कुछ समय 15-20 महीने 1 महीना ही है आपको जीने के लिए। अभी वो अमेरिका में थे तो उन्होंने विचार किया कि मैं अमेरिका में ही मेरे शिष्यों के साथ रहूंगा और उनको थोड़ा संग दूंगा और फिर अमेरिका में शरीर त्यागूंगा। तो इंद्रनंद महाराज ने उनसे निवेदन किया कि आप अमेरिका में शरीर मत त्यागिए, आप मायापुर आ जाइए, आपने जीवन भर अपना शरीर दूसरों के सेवा के लिए इस्तेमाल किया है, तो अंत में आपको अपना शरीर भगवत धाम में त्यागना चाहिए, आपको मायापुर धाम में त्यागना चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया उनका निवेदन। तो तभी इंद्रनंद महाराज साउथ अफ्रीका में थे और श्रीधर महाराज अमेरिका में थे, तो उन्होंने दोनों ने फैसला किया कि दोनों लंदन में आएंगे साथ में और फिर लंदन से फ्लाइट पकड़ के वे मायापुर आएंगे। तो जब वे लंदन में पहुंचे तो श्रीधर महाराज वहां पे थे, तो फ्लाइट से आए थे तो बड़े अशक्त हो गए थे। जब अशक्त हो गए थे वे तो उन्होंने देखा कि बहुत से भक्त उनसे मिलने आए थे और कई भक्त थे जो उनको उनसे दीक्षा भी लेना चाहते थे। और फिर तभी श्रीधर महाराज बड़े अशक्त थे, पर उन्होंने आखिरी कुछ उपदेश दिया, बताया कि भौतिक जगत बहुत नश्वर है और हमें भगवान ही हमारा आश्रय है। तो इंद्रनंद महाराज लिखते हैं कि मैंने ऐसे वचन बहुत बार सुने थे, मैंने खुद भी बोले थे, पर अभी श्रीधर महाराज जो बता रहे थे साक्षात्कार साथ बता रहे थे तो उनमें दिव्य शक्ति थी, तो मैंने देखा कि मैं खुद भी नोट्स बना रहा था वो जो बता रहे थे उसके। और फिर क्या हुआ, कुछ भक्त थे जो श्रीधर महाराज से ब्राह्मण दीक्षा चाहते थे, तो ब्राह्मण ही चाह रहे थे, तो फिर क्या हो गया, दीक्षा चाह रहे थे तो फिर महाराज बोले ठीक है तो मेरे कमरे में आ जाओ। तो कमरे में आए और फिर उनको गायत्री मंत्र बोलना था, तो गायत्री मंत्र बोलना था तो क्या हो गया, श्रीधर महाराज इतने बीमार थे कि उनको गायत्री मंत्र याद नहीं आ रहे थे, तो कान में गायत्री मंत्र बोलना था पर उनको याद नहीं आ रहा था। तो मैं इंद्रनंद महाराज को बुलाया कि आप बताओ गायत्री मंत्र, आप मेरे कान में बोलो और मैं इनके कान में बोलता हूँ, ये परंपरा हो रही थी। तो वास्तव में इंद्रनंद महाराज भी साउथ अफ्रीका से तुरंत निकलते आए थे, लगभग 24-25 घंटे हुए थे, वो सोए नहीं थे, वो कुछ खाए भी नहीं थे, वो भी थके हुए थे, तो वो गायत्री मंत्र बोलने लगे और अचानक उनको भी गायत्री मंत्र याद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने दूसरे एक भक्त को बुलाया और कहा तुम गायत्री मंत्र मेरे कान में बताओ और मैं श्रीधर महाराज के कान में बताता और वो उस भक्तों के कान में बताएंगे। तो इस तरह से फिर महाराज ने अपनी अंतिम दीक्षा दी कई भक्तों को। और फिर अगले दिन, तो जब अगले दिन उनको जाना था तो श्रीधर महाराज स्नान करके बाहर आए थे, तो देखा कि उनके जो शरीर था कई रंग में लाल कई नीला पड़ गया था, शरीर कई नीले निशान दिखाई देते शरीर में। तो जब इंद्रनंद महाराज देखा तो श्रीधर महाराज ने उनको देखा कि ये जो है ये मेरे शरीर में जो रक्त की नलिया होती है वो भी खराब हो गई, जब फट गई है तो वहां पे नीला हो गया रंग। तो जब श्रीधर महाराज बिना किसी भय के बोले कि जब बड़े नलिया फट जाएगी तब मैं चला जाऊंगा, और कुछ भी भय नहीं था उनके मन में। और फिर जब एयर फ्लाइट में जाने वाले थे तो फिर क्या हुआ, जब जाने वाले थे तब अचानक सब चेक कर रहे थे इंद्र महाराज, उन्होंने देखा कि महाराज, उन्होंने श्री रामाज से कहा कि आपका टिकट बराबर नहीं है। साधारण क्या, जब परदेश से भारत में आते हैं तो फिर वो टू वे टिकट लेते हैं, कि मतलब से लंदन से भारत और फिर भारत से वापस लंदन 3 महीने के बाद, तो टू वे टिकट लेते हैं तो फिर क्या होता है, खर्चा भी कम होता है और फिर सरकार से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो बस श्रीधर महाराज का 1 वे टिकट ही था, तो तभी श्रीधर महाराज ने बोला महाराज आपका टिकट सिर्फ 1 वे टिकट है, 2 वे नहीं है। और जब उन्होंने बोला ऐसे तब उनको समझ में आ गया कि वो कुछ गलत बोले, क्योंकि श्रीधर महाराज वापस आने वाले नहीं थे। तो श्रीधर महाराज हंसे, अरे हाँ, बोले कि 1 वे टिकट है भक्ति होगा, ये 1 वे टिकट है बैक टू गॉड, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो बिल्कुल निर्भय थे। और फिर जब ट्रेन में, जब प्लेन में गए तो क्योंकि वे इतने बीमार थे, जब प्लेन में होते गए तो फिर क्या हुआ, तो प्लेन अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, मृत्यु के नजदीक है, तो कभी कभी प्लेन में भी उसको इजाजत नहीं देते हैं। तो फिर इंद्र महाराज को थोड़ा डर लग रहा था कि श्रीधर महाराज तो अलाउ करेंगे नहीं, तो उनका जो पेट था बड़ा हो गया था, सिर नीचे गिर रहा था। तो फिर उन्होंने बताया तो उनसे देखा क्या हुआ उनको, तो इंद्र महाराज ने बताया कि उनको बुखार था, बहुत काफी बुखार था पर अभी ठीक हो रहे हैं। तो देखा उनकी ओर और फिर उनको अलाउ कर दिया। तो फिर पहला, तो श्रीधर महाराज जब जा रहे थे लंदन एयरपोर्ट पे, उन्होंने बताया कि मेरी 3 इच्छाएं है, मेरी एक इच्छा है कि मैं मायापुर धाम पहुंचना चाहता हूँ, दूसरी इच्छा है कि मैं गौर पूर्णिमा मायापुर में बिताना चाहता हूँ, और तीसरी इच्छा है कि मैं पंचतत्व का अभिषेक देखना चाहता हूँ, और फिर मैं मेरे शरीर उतारने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जब प्लेन में बैठे तो प्लेन में उनको जा रहे थे तो उनको बहुत दर्द होने लग गया, दर्द के कारण वो थोड़े मौन करने लगे थोड़े दर्द के कारण। तो फिर तुम्हारे उनके मुंह में थोड़ा पेन किलर डाल दिया कम करने के, तो वहाँ पे एक एयर हॉस्टेस आ गई, कुछ समस्या है क्या, इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो श्रीधर महाराज ने अपनी आंखें खोली, हाँ बोले इस भौतिक जगत में हमेशा प्रॉब्लम होता है। और फिर वो प्रचार करे, वो श्री महाराज इतने विवाद परिस्थिति में उनको प्रचार करने लगे। वो बोले कैसे है, वास्तव में भौतिक जगत नश्वर है और यहाँ पे बुढ़ापा है, मृत्यु है, बीमारी है, अब प्लेन हाईजैक होता है, एक्सीडेंट होता है, प्लेन क्रैश होता है, तो वो सुन रही थी एयर हॉस्टेस। तो फिर वो, तो फिर तो उन्होंने पूछा, तो उनका जो पोशाक भी था कुछ साधु जैसे पोशाक था, उन्होंने कहा तो क्या आप इस भौतिक जगत से बाहर जाने का योजना बना रहे हैं। तो बाहर, हाँ एग्जैक्टली वही योजना बना रहे हैं। तो आप कैसे जाते हैं बाहर, मुझे बताओ ना। तो इंद्र महाराज सोच रहे थे कि अभी बाहर इतने थके हुए, उनको ज्यादा बोलेंगे तो थक जाएंगे। तभी क्या किया श्रीधर महाराज ने, इंद्र महाराज के बैग से एक रोगा जी का किताब निकाला और वो ये पढ़ो आप, आपको पता चले कैसे यहाँ से बाहर जाना है। तो उस समय में भी वो प्रचार कर रहे थे। और फिर बाद में जब भारत में आए हुए तो कलकत्ता में, कलकत्ता एयरपोर्ट में जब पहुंचे वो, तो फिर उनके लिए गाड़ी वापस आई थी। और फिर गाड़ी जब आई थी तो उन गाड़ी में बैठे कलकत्ता से तब वो मायापुर जा रहे थे। जब मायापुर जा रहे थे तो महाराज लेटे हुए थे, तो महाराज से एक वरिष्ठ शिष्य वहां पे आए थे, और जो शिष्य थे तो महाराज उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे कि आपने इतनी सारी सेवाएं की इतनी प्रामाणिकता से और मैं आपका इतना कृतज्ञ हूँ। तो इंद्र महाराज देखते थे ये गुरु और शिष्य के बीच में, जो गुरु अपने शिष्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे कैसे सेवा की है, तो बड़ा दिव्य। और ऐसे मायापुर पहुंच रहे थे तो ये रात का फ्लाइट था और सुबह लगभग 8 बजे वो 7:30 बजे पहुंचे वहां पे। तो जब वो 7:30 बजे पहुंचे तो वो जब मायापुर के चंद्रोदय मंदिर के सामने आए, तो जब पहुंचे तो इंद्र महाराज खिड़की से बाहर देखा और बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा उन्होंने। क्या क्या, जो मायापुर में न्यूज मिला था श्रीधर महाराज आने वाले हैं, तो उस दिन का उन्होंने भागवतम क्लास कैंसिल कर दिया और जीबीसी मीटिंग चल रहे थे तभी, तो सारे जीबीसी श्रीधर महाराज को स्वागत करने के लिए मंदिर के एंट्रेंस में आ रहे थे, सब कीर्तन कर रहे थे। तो गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज, जय पताका महाराज, ये सब वहां पे कीर्तन कर रहे थे और श्रीधर महाराज का स्वागत कर रहे थे। और फिर इंद्र महाराज श्रीधर महाराज को उठाया और उनको देखो बोला, कैसे से कोई एक योद्धा होता है, बहुत युद्ध में पराक्रम करके जब आता है तो उसके लिए बैंड ऑफ सेना में होता है, बैंड ऑफ ऑनर होता है, कि सारे बाकी सैनिक होते हैं उसके लिए बैंड बजाते हैं कि आपने इतना बड़ा पराक्रम किया है। तो वैसे ये प्रभुपाद जी के महान सहज महान योद्धा थे, वे अभी आ रहे थे मायापुर धाम में, तो सारे प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य थे वे उनके स्वागत के लिए वहां पे आए थे। और फिर महाराज ने उनका महाराज मां टेम्पल में पहुंचे, दर्शन लिया और दर्शन लिया, फिर उनको वो शंखा बिल्डिंग है वहां पे एक रूम दी गई। और ये रूम में पहुंचे तो तब तक वे बहुत थक गए थे, क्योंकि लंबा फ्लाइट था, उसके बाद में कार का राइड था, बाद में चलते हुए दर्शन भी लिया, तो लगभग बेहोश जैसे हो गए थे सब। तो बड़े चिंतित हो गए, तभी डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर आके उसके साथ स्कोप लेते हैं, उससे फिर पेट और छाती पतोल रहे थे। श्रीधर महाराज ने अपनी आंखें खोली और देखा सबकी ओर, सब बड़े गंभीर दिखाई दे रहे थे, सबके चेहरे बड़े गंभीर और मायूस थे। और श्रीधर महाराज ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर जरा बताओ मुझे लड़का है या लड़की है, वो पेट टटोल रहे थे। तो श्रीधर महाराज से जॉली स्वामी बोला करते थे कि अभी इतना इतना पीड़ा थी, इतनी बीमारी थी, मृत्यु इतने करीब थी, फिर भी वो सोचते थे कि भक्त इतने गंभीर हो गए तो भक्तों को थोड़ा प्रसन्न करना चाहिए। फिर भगवान की कृपा से उनकी तीनों इच्छाएं पूरी हुई। मायापुर पहुंचे पंचतत्व के अभिषेक में, बेबी थे ऑल्टर में अभिषेक कर रहे थे। आपने कई लोग वीडियो भी देखा होगा शायद कैसे अभिषेक कर रहे थे। तो फिर उस समय मैं भी कुछ विद्यार्थियों को लेकर मायापुर में कैंप के लिए गया था, तो कभी श्रीधर महाराज के दर्शन के लिए गया था, वहाँ पे हम कीर्तन कर रहे थे। तो महाराज बता रहे थे उनका पेट बहुत फूक गया था, तो महाराज श्री बोल रहे थे कि महाराज तभी भी हंसी जोक कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे पेट से इतना गैस आ रहा है अभी कि यहाँ पे जो भारत में गैस चलाने गैस उत्पन्न करने की कंपनी ONGC नाम की, बोले कि मेरे पेट में वो गैस बनाने की कंपनी उत्पन्न कर सकते है और फिर उससे हम हमारे मायापुर मंदिर के लिए फंड रेज कर सकते थे। तो फिर वो उस समय भी बिल्कुल हंसते हुए बिल्कुल निर्भय चेतना में थे। और फिर श्रीवास ठाकुर के आविर्भाव के दिन सुबह 4:30 के समय वो उनके मंदिर में राधा माधव का बड़ा चित्र दर्शन करते हुए बड़े निर्भयता से अपना शरीर त्याग करके भगवत धाम लौट गए। तो इस तरह से जो भक्त होता है विनाशम च मृत्युम च संवृत्यामृतमश्नुते, कि वो भौतिक जगत में रहता है, भौतिक जगत की सेवा करता है और फिर भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है उसको प्राप्ति कर लेता है। सारांश में आज हमने चर्चा की दो प्रधान विषयों की। एक विषय है मायावाद, मायावाद के बारे में हमने कैसे ब्रह्मवादी जो होते हैं वो भगवान के प्रति अपराध नहीं करते हैं, वे ब्राह्मण की ओर आकर्षित होते हैं, पर मायावादी जो होते हैं वो न केवल ब्राह्मण के और आकर्षित होते हैं पर वो भगवान और भक्ति के प्रति अपराध करते हैं। हमने कई उदाहरण देखे इसके, कैसे काला रंग या भगवान का श्याम वर्ण जो है वो अज्ञान का प्रतीक है ऐसे बताया जाता है, कैसे जो राधा कृष्ण की विग्रह की पूजा हो रही है तो बोलते हैं मेरे ही पूजा कर रहे हैं, या विग्रह को हमारे ध्यान की शक्ति से मिट्टी बनाना चाहिए ऐसा धारणा करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मायावाद बहुत ही अपराधास्पद है। तो ये कहते हैं भक्ति कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है और जब अधिक बुद्धिमान हो जाओगे तो आप हमारे से मायावादी बन जाओगे। पर चैतन्य महापुरुष ने खंडन किया प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वार्तालाप में। फिर हमने ऐतिहासिक रूप से देखा कि कैसे जो अप्रामाणिक भक्त है, तथाकथित भक्त है, दिखावा करने जाते भक्ति के और भगवान से ईर्ष्या रखते है, और इसके विपरीत जो प्रामाणिक भक्त है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए भगवान ने शंकराचार्य के रूप में शिवजी को भेजा, और जो अद्वैतवाद था उसे सब वैष्णव आचार्य ने उसका खंडन किया। पर जब अंग्रेज भारत पे राज्य कर रहे थे तो उस समय राजनीतिक स्तर पे भारत को एकत्रित करने के लिए पुनः मायावाद का प्रचार हुआ, और यह मायावाद शंकराचार्य का मायावाद नहीं था, यह मायावाद वास्तव में एक विकृत मायावाद था जिसमें वे मानव सेवा ही माधव सेवा है इस प्रकार के नारे भी लगाते थे। और मानव सेवा जो समाज सेवा करना अच्छा है, पर समाज सेवा करते समय हमें समझना चाहिए कि भगवान के प्रति भगवान की भक्ति पे जो सेवा है वो सर्वोच्च समाज सेवा है, पर भक्ति के प्रति अपराध करते हैं तो वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। और मेरे हिसाब से शायद प्रभुपाद और वैष्णव आचार्यों ने खंडन किया है, और कैसे हमने देखा कि जो फिलाडेल्फिया में मायावादी आए थे, वे कैसे शब्द शब्द बोल के शब्द माया का सुख इस तरह से फंसाने का प्रयास कर रहे थे भक्तों को, पर भक्त फंसे नहीं उनसे। और फिर हम दूसरा भाग देखा कैसे सब मार्ग एक ही उद्देश्य पर नहीं जाते हैं, अलग अलग मार्गों से अलग अलग फल मिलते हैं। और इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ हमें हम भक्ति को ही मानते हैं, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और जब भगवान की और भक्ति करनी है इस समय में भी जितना हमें भौतिक जगत के नश्वरता का ज्ञान होता है उतना हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर दिखाता है कि अगर आप दवाई नहीं लोगे, ट्रीटमेंट नहीं लोगे, तो आपकी ये गति हो जाएगी, इस तरह से तड़पोगे आप और मृत्यु हो जाएगी। अब दूसरा दिखाता है इस तरह से अगर आप दवाई लेते हो तो आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे, तो दोनों दिखाते हैं तो फिर व्यक्ति भगवत धाम लौट सकता है, और तो फिर दृढ़ता से भक्ति कर सकता है। तो इसलिए शास्त्र बताया गया है कि नश्वर जगत कैसे कुछ भी इससे स्थायी नहीं है, और कैसे भक्ति के द्वारा न केवल हम भगवत धाम प्राप्त करते हैं तो भौतिक जगत के दुखों को भी हम परे जा सकते हैं। और उसके संबंध में श्रीधर महाराज की कहानी के बारे में करके अंतिम दिनों के बारे में चर्चा की। तो किसी को सवाल है? Yes, please. मायावाद, शून्यवाद, निर्विशेषवाद, ब्रह्मवाद। अच्छा सवाल है। सबसे पहले जो शून्यवाद है वो है बुद्ध धर्म। शून्य मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे कोई कोई अगर दिया जल रहा है तो अगर दिया के लिए जो तेल होता है तेल खत्म हो जाएगा तो फिर वो दिया बंद हो जाएगा। तो उस तरह से जो बौद्ध धर्म के लोग है वो कहते हैं कि हमारी इच्छा जो है आशा परमम, आशा ही परमम दुखम, निराशा परमम सुखम, कि आशा ही परम दुख का कारण है। हमारा भौतिक हमारे जीवन की ज्योति चल क्यों रही है? क्योंकि हमारी आशाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं। तो आशा और वासनाओं को यदि हम अंत कर देंगे तो हमारा अस्तित्व अंत हो जाएगा। जैसे अगर हम बुझाएंगे करके किसी दिए को तो पुनः उसको जलाया जा सकता है, पर उसका तेल ही बंद कर दिया तो जला ही नहीं सकते उसको। तो ठीक उस तरह से हमारी इच्छाओं को हम अंत कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व भी अंत हो जाएगा। तो शून्यवाद मतलब कुछ अस्तित्व को ही अंत कर देना, उसको शून्यवाद कहते हैं। अस्तित्व को अंत कर देना ये शून्यवाद है। और फिर इसके बाद निर्विशेषवाद के दो विभाग है। निर्विशेषवाद मतलब जो परम सत्य की कोई विशेष नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई लीला नहीं है, विशेष नहीं है। तो विशेष मतलब जैसे विशेषण होता है कुछ विशेष गुण नहीं है उसके, तो निर्विशेषवाद। तो निर्विशेषवाद के दो विभाग है, ब्रह्मवाद और मायावाद। तो दोनों ब्राह्मण की ओर आकर्षित होते हैं, पर दोनों में फर्क क्या है कि ब्रह्मवादी भगवान के प्रति अपराध नहीं करते हैं। ब्रह्मवादी अपना अपना ब्रह्मवाद के प्रति उनका चिंतन कर रहे, मनन कर रहे, ध्यान कर रहे और ब्राह्मण में लीन हो जाते हैं। पर मायावादी न केवल अपना ब्राह्मण का ध्यान कर रहे हैं पर साथ साथ भगवान और भक्ति के प्रति अपराध करते हैं। तो जब ब्रह्मवादी होते इनका उदाहरण आता है शास्त्रों में, सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण है, फिर चतुष्कुमारों का उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी जब व्यास रचित श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो उससे आकर्षित होते हैं भगवान की ओर। उसी तरह से किंजल कमिष्क तुलसी मकरंद वायु संक्षोभ मक्षर जिशाम चित्त तन्वो, ऐसे बताया श्रीमद् भागवतम में कि जब भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की तुलसी जो कुमारों के नाक में उसका सुगंध प्रवेश किया तो फिर वो ब्रह्म ज्योति के ध्यान से आकर्षित हो गए, विक्षेप हो गया और भगवान की भक्ति में लग गए। जो ब्रह्मवादी है उनको भगवान के बारे में पता नहीं है, भगवान की भक्ति का माधुर्य उन्हें चखा नहीं है। यदि भक्तों का संग मिल जाता है, भक्ति का माधुर्य उन्हें पता चलता है, तो फिर भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। पर मायावादी जो है वे भगवान की भक्ति के प्रति अपराध करते हैं, इसीलिए वे बहुत ही उनकी निंदा करते हैं हमारे आचार्य। तो ये सब स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण देता हूँ मैं। भक्तिदान ठाकुर एक कहानी बताते हैं कि मान लीजिए कोई बालक है, उसके आंखों में मोतीबिंदु हो गया है। आप मोतीबिंदु जानते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं उसको। तो क्या होता है, आंखों का आगे का जो भाग होता है वो उससे वो खराब हो जाता है, उससे कुछ अस्पष्ट दिखने लगता है और बाद में अंधकार आ जाता है, अंधापन आ जाता है। तो ऐसे मान लीजिए एक परिवार में एक बालक है और उसको अभी अंधा होने ही वाला है, तो उसकी आंखें बहुत बीमार बहुत खराब हो गई है। तो एक तो डॉक्टर तो वो पिताजी उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो एक चाचा होते हैं, वो कहते मैं डॉक्टर हूँ, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। ये बच्चा जो है इसके आंखें दर्द कर रही है, तो इसके आंखों को काट डालो, काट के सेक डालो, फिर क्या होगा, सारा दर्द बंद हो जाएगा, उसको भी दर्द नहीं होगा और आपको भी दर्द नहीं होगा। वो रो रहा है तो आपको दर्द, आपको भी दर्द नहीं होगा। बोलता है ये तो बड़ा खतरनाक है, इसके आंखों कैसे काट सकते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। ये बच्चा रो रहा है कि उसकी आंखें दर्द कर रही है, आप ऐसे करो उसको मार डालो, उसको मार डालो तो वो रोना बंद हो जाएगा, तुम्हारा भी रोना बंद हो जाएगा। चाचा बोलते हैं क्या बकवास है, उसको ऐसे मार सकते हैं। तो फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि वास्तव में इसके आंखों में मोतीबिंदु हुआ है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको, इसकी ऑपरेशन करना चाहिए। और ऑपरेशन करने से वो निकाल लेते हैं कैटरैक्ट, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा और फिर वो देख पाएगा। तो ये जो है ये क्या उदाहरण है कि सारा जीवात्मा इस भौतिक जगत में है वो एक अंधे के समान है, उसको आध्यात्म तो पता नहीं है, वो भौतिक को ही सत्य मान रहा है और भोग में लग रहा है, तो उसको आध्यात्मिक सत्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो अंधकार के समान ही है। तो मायावादी क्या कहते हैं, आंखों को उड़ा दो, मतलब क्या, इस भौतिक जगत में हम रूप की ओर आकर्षित है, रूप लीला नाम गुण इनकी ओर आकर्षित है, तो ये सब नाम रूप गुण लीला को आप नश्वर, आप झूठा बता दो। तो अगर नाम रूप गुण लीला रहेगा नहीं, फिर कोई आकर्षण रहेगा नहीं, फिर कोई बंधन रहेगा नहीं, कोई भोग कोई दुख रहेगा नहीं। तो इसीलिए ऐसे बताओ कि सब नाम रूप गुण लीला माया है, सबका नाश कर दो। तो फिर वो निर्विशेषवाद के समान है। और ये शून्यवाद क्या है, बोलते हैं कि अरे आप इस भौतिक जगत में दुख भोगत रहे हो, आपका अस्तित्व अंत कर दो, आपका दुख भी अंत हो जाएगा। तो ये क्या है, ये शून्यवाद के समान है। पर वैष्णव बताते हैं, वैष्णव ये दो ये पहले दो डॉक्टर थे वो गलत डॉक्टर थे, उनके समान है जो अपने डॉक्टर है वो वैष्णव के समान है। वैष्णव क्या बताते हैं आपको, हम बताते हैं कि वास्तव में हमारे आंखों में क्या है, बीमारी है। वो बीमारी क्या है कि हम जो रूप गुण लीला ये सब गलत नहीं है, पर हम रूप गुण लीला भगवान की रूप गुण लीला से आकर्षित नहीं हो रहे, दूसरों के रूप गुण लीला से आकर्षित हो रहे, ये दुख का कारण है। तो वास्तव में हमारे आंखों की सर्जरी करते हैं, जैसे हम प्रार्थना बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकाया। तो जो गुरुदेव है वो ज्ञान का अंजन लगाते हैं, शलाकाया मतलब जो ऑपरेशन करते हैं उसको ऑपरेशन का जो चाकू होता है उसको शलाकाया बोलते हैं। तो ये दोनों के द्वारा क्या करते हैं, गुरुदेव होते हैं वो हमारे आंखों को ठीक कर देते हैं, और उससे हम देखते हैं कि वास्तव में इस भौतिक जगत में जिनकी जो नाम रूप गुणलीला है वह सब अस्थायी है, और भगवान की जो नाम रूप गुणलीला है वो स्थायी है, तो उसकी ओर हम आकर्षित होते हैं। तो फिर हमारा असली जीवन पुनः जागृत हो जाता है, पुनः प्रारंभ हो जाता है। ये स्पष्ट है, कोई और सवाल है किसी का? ओके, इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock, विल स्टॉप हियर। यस सर, ओके ब्रोस, सो डे आफ्टर टुमारो, ओके, थैंक यू वेरी मच, प्रभुपाद की जय, श्री शोक की। Yes, sir.
Okay, buddy. Yes, sir.
Okay, Hare.